प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग दो, लेक्चर नंबर 44। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो अच्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्। सुरसुरनरपतिवंद्यने प्रविनष्टघातिकर्मणे प्रणमन करोहु धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने वरिशेष तीर्थंकरने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृगचारित्र तपवीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवणि हो मनुज क्षेत्रे वर्तता हंतने अरिहंतने सौ सिद्धने नमस्करण करिये गणधरने अध्यापकोने सर्व साधु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्य निजे नाति शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य रुति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं, वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से अभी हम दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 17 पर आ गए, 17। यहाँ ऊपर से शुरू से पढ़ते हैं, कहते यहाँ तो मोक्ष तत्व और संवर निजरा तत्व दोनों का खुलासा करते, यानी उसका स्वरूप बताते हैं। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, देखो केवल ज्ञान का स्वरूप कहो या मोक्ष तत्व का स्वरूप कहो, एक ही बात है। ये सर्वज्ञ भगवान किस तरह से और वो केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ है, उसकी भी बात उन्होंने विस्तार से बताई। उन्होंने ये बताया कि उनको सब कुछ प्रत्यक्ष है और कुछ भी परोक्ष नहीं है, दोनों ओर से बता दिया कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, सत चित और आनंद। चित कहने से समझते हैं, चित का अर्थ क्या है? नहीं, चित यानी ज्ञान दर्शन मिलकर चित, चेतना जिसको कहेंगे। सत यानी अस्थि स्वरूप है, चित स्वरूप का अर्थ होते ज्ञान दर्शनमय और आनंद, अर्थात ज्ञान और आनंद से भरा पड़ा प्रभु अंदर है। उसकी दृष्टि करके, दृष्टि करना का अर्थ होता है उसी में स्वपना स्थापित करके, श्रद्धा यानी वो कैसी श्रद्धा, वो मय रूप से श्रद्धा, उस तरफ का ज्ञान करके यानी उसी में एकाग्र होकर उसका ज्ञान करके और उस तरफ लीन होकर, यानी उसमें श्रद्धा भी आई, ज्ञान भी आए और चारित्र भी आए, जिसको हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहते हैं। शुद्ध उपयोग से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। यह केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और उसमें परोक्ष किंचित कुछ भी नहीं है, यह बात करते हैं। ये गाथा का यही विषय है। कोई चीज अनादि की है तो उसका ज्ञान केवली को नहीं हुआ ऐसा नहीं है। अनंत काल में काल का कोई अंत नहीं है तो उसका ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं, यानी अनादि से अनंत काल तक सभी चीजों को वो जानते हैं। आदि और अंत बिना का काल है, और क्षेत्र जो है अलोक आकाश उसका कहीं अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं, अनंत 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 योजन चले जाओ तो भी जिसका अंत नहीं, यानी लोकाकाश बीचों बीच सेंटर में है आकाश द्रव्य के, और उनके सभी दिशाओं में से कितना भी चले जाओ तो कोई उसका एंड ही नहीं है, उसको अनंत कहा। उसका भी केवल ज्ञानी को ज्ञान है। दो बात हुई, एक आत्मा में और एक एक द्रव्य में अनंता 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 गुण है। अनंता 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 कहा तो कितना अनंता, कि अनंत को अनंत से गुणो यानी गुणाकार करो तो उसमें अंतिम अनंत नहीं आता, इतना वो ये दीर्घ नहीं चाहिए ह्रस्व चाहिए, इतना अनंत 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 आत्मा में गुण है और परमाणु में भी इतने हैं, प्रत्येक द्रव्य में है, भले वो परमाणु एक प्रदेशी छोटा द्रव्य है और आकाश द्रव्य इतने अनंत प्रदेशी है तो गुण किसमें ज्यादा हो गए। हाँ दक्षा बेन, एक प्रदेशी परमाणु है, इतना छोटा सिंगल प्रदेशी है उसका साइज, और आकाश अभी हमने देखा अनंत 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 प्रदेशी है, तो उसमें गुण किसमें ज्यादा हो गए, दोनों में इक्वल। हाँ, सभी द्रव्यों में प्रत्येक में अपने अपने अनंत गुण है। ईरस्व अभी अभी बताया ना मैंने, दोनों जगह ईरस्व चाहिए। हाँ हाँ, क्षेत्र का भी अंत नहीं उसका भी ज्ञान है, काल का आदि अंत नहीं उसका भी भगवान को ज्ञान है। क्षेत्र में आदि नहीं कहा, केवल क्षेत्र में अंत नहीं कहा, क्योंकि आदि कैसे कहाँ से कहेंगे हम, और काल में आदि और अंत नहीं ऐसा लिया। उसका भी भगवान को ज्ञान है, और एक एक द्रव्य में गुण का अंत नहीं, जब गुण का अंत नहीं कहेंगे तो संख्या की अपेक्षा, काल यानी कब से है और कब तक है उसको आदि अंत कहा, और क्षेत्र में कहाँ तक है तो कहते अनंत अनंत अनंत, और गुणों की अपेक्षा अनंत नहीं उसकी संख्या लेना। तो कहते कि गुण की संख्या कितनी है कि अनंत 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 अनंत, उसमें आखिर का अनंत होता ही नहीं, यानी वो एंड ही नहीं ना, इसीलिए उसको अनंत कहा। इन ईरस्व सब द्रव्य के अनंतानंता गुण का यानी अनंता अनंत गुण का भगवान को ज्ञान है, समझ में आया। इस प्रकार क्षेत्र का अंत नहीं, काल का अंत नहीं, भाव का अंत नहीं, गुण में ने भाव लेना, यानी इनका अंत नहीं फिर भी भगवान के ज्ञान में सब कुछ जाना जाता है, और एक एक गुण की अनंती पर्याय है। इस पर्याय का अंत नहीं कि कहाँ आखिरी पर्याय है, क्योंकि काल ही अनंत है और प्रत्येक समय में एक एक पर्याय हो रही है, इन सब का भगवान को ज्ञान है। ये जहां जहां ई आया है ना, इनका इसका इतना वो सब ईरस्व चाहिए। परमात्मा त्रिलोकनाथ वीर प्रभु तो अरिहंत थे, वे अभी तो सिद्ध हो गए। ऐसा क्यों कहा, क्या आपका नाम मैं भूल गई, उमा बेन, हाँ बोलो, यहाँ क्या लिखा, वीर प्रभु ने महावीर भगवान अरिहंत थे क्यों कहा, अभी क्या है वो अभी सद्य हो गए है ना। हाँ, यहाँ भगवान महाविधेय में विराजते हैं, वे अरिहंत पद में है। ऐसे कितने भगवान हैं अभी वर्तमान में, 20 है, जिसको हम 20 क्या कहा, हाँ विहरमान, यानी अभी वो वर्तमान में है। हाँ, अन्य सामान्य केवली तो लाखों होते हैं, नहीं नहीं 8 लाख, 2 करोड़ों में नहीं होते कभी, 8 लाख नहीं, हरेक के उतने उतने नहीं होते, उनकी मैक्सिमम संख्या तो 8 लाख आपने बताई ना, हाँ 58,005 ना ना, वो करोड़ों में तो मुनियों के होते हैं, वो 8 लाख है वो तो केवली के हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा, और वो भी सभी जगह के मिलकर एक एक के नहीं। मैंने एट ए टाइम इतने नहीं हो गए, पीछे पीछे बाद में होते रहे कि पहले उसका तीर्थकाल चल रहा है, पर एक समय में कभी इतने उससे ये 8 लाख और जो कुछ है सब मिलकर संख्या इससे कभी क्रॉस नहीं होगी। ये मैक्सिमम संख्या बताई जाती है, थोड़े कम हो सकते हैं, उससे अधिक कभी नहीं होगे। यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ भगवान महाविद्या में विराजते हैं, वे अरिहंत पद में है, यानी वो तो तीर्थंकर है, और बाकी जो सामान्य केवली वो अरिहंत पद में है। महाविदेह क्षेत्र में भगवान सीमंदर प्रभु विराजते हैं, वे अरिहंत पद में है, यानी अभी तीर्थंकर पद में है। महावीर प्रभु आदि सिद्ध पद में चले गए। यहाँ कहते हैं कि सिद्ध को तो वाणी शरीर है नहीं, सर्वज्ञ अरिहंत को वाणी है, तो वाणी द्वारा यानी दिव्य ध्वनि द्वारा यह उपदेश आया। तो उनको उपदेश देने का भाव हुआ कि नहीं हुआ, इच्छा हुई कि नहीं हुई, हुई। कितने जो उनको उपदेश दे और भला करे ऐसी इच्छा हुई भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हाँ वीतरागी है। वीतरागी का अर्थ क्या है? अभी कोई इच्छा वगैरह नहीं, कुछ नहीं है। उनका उपदेश जो निकलता है, वाणी निकलती, वो सहज निकलती। कोई इच्छा नहीं कि ये सुने और ये जीव सब कल्याण करे अपना अपना, कोई ऐसी बात नहीं। किसी को बुलावे और उसका भला करे, उसको भेज दे, ये इच्छा वाली बातें उनके नहीं हो सकती। हमें ये नक्की करना है ना, सर्वज्ञ कहते हैं तो सर्वज्ञ होने के पहले वो पूर्ण वीतरागी हुए हैं, तभी जाके सर्वज्ञ हुए। तो जो अरिहंत पद में है उनको सिद्धों को नमस्कार करने का भाव होगा कि नहीं होगा, अभी आपको ये सब नक्की करना पड़ेगा। क्या मैंने पूछा? बहुत अच्छा, अभी नमन का भाव नहीं होगा। ये इस तरह से हमको बुद्धि बराबर लड़ानी है, क्योंकि जो नमन करने का भाव छठे गुण स्थान तक होगा, आगे तो ध्यान अवस्था ने लीन शुद्धोपयोग अवस्था है। हाँ पेज नंबर 17 पर है, हम नीचे का पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे और ऊपर से उसमें तीसरी लाइन हमने पढ़ी थी, चौथी लाइन के जो सिद्ध भगवान है उनको नहीं। किसके पांचवे गुण? सातवें में देखो, सातवां गुण स्थान है तो शुद्ध उपयोग का है, पर ये छठा सातवां तो कंटिन्यूस है, यानी वो तो ऐसा नहीं कि अभी छठे में चले गए, अभी ऐसा नहीं है। नमस्कार करते करते बीच में सातवें में चले जाएंगे, बाहर से नमस्कार की क्रिया दिख रही है आपको, छठा सातवां कंटिन्यूएशन में होता रहता है। तो नमस्कार वही तो उस समय वो नहीं है। हाँ शुद्ध उपयोग, हाँ यानी छठे तक ही ये पूजक भाव, जो वंदे भाव। हाँ दो नंबर की जो है 17 नंबर का पृष्ठ है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ जो है देखो, दिव्य ध्वनि द्वारा ये उपदेश आया, मिला ना, पांचवी लाइन है। दिव्य ध्वनि यानी अंदर आवाज हुई, ओम ध्वनि, ये वो मुंह से ऐसे जो हम हिलाते हैं मुंह, कंठ में आगे पीछे होते हैं, जीभ हलती है, ऐसे उनका कुछ नहीं है, सर्वांग से वो ध्वनि छूटती है। ओम ध्वनि, उस ओम ध्वनि का सार यह प्रवचन सार है। प्र यानी उत्कृष्ट, वचन प्र अधिक वचन, यानी प्र यानी उग्र का अर्थ है उत्कृष्ट। दिव्य वचनों उसका सार यह प्रवचन सार है, क्योंकि वहां तो साक्षात भगवान की वाणी सुनकर आए हैं और उसका सार सार हमको यहाँ उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है ग्रंथ के रूप में। ऐसी बात है, बहुत सूक्ष्म बात है बापू, लोगों को बाहर से कल्याण मान लेना है, बाहर से ने कुछ क्रिया करने से मेरा कल्याण होगा ऐसी मान्यता है, और समाज में एक दूसरे को उसी का उपदेश भी होता है, उसी को सराहन भी जाता है कि अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा किया आपने, है ना। जैसे कि क्रिया करे दयाव्रत, भक्ति और तप करने से कल्याण होगा, वह सब तो पुण्य बंध की क्रिया है। राग है तो वहाँ पुण्य बंध होगा वहाँ पर। यहाँ यह बात सिद्ध करते हैं कि अंदर शुद्ध उपयोग हुआ उससे केवल ज्ञान होता है, और उस ज्ञान में परोक्ष कुछ नहीं रहता। यानी उसके विधि भी बताई, केवल ज्ञान कैसे होता है? दया दान आदि करने से, महाव्रत से होता है क्या? तो कहते नहीं, शुद्ध उपयोग से होता है। एक बात, कर्मों का क्षय होने से तो होता होगा तो कहते अपने से ही हुआ है, अपना ही लक्ष्य करके शुद्ध उपयोग से हुआ है, और उसमें कुछ भी परोक्ष नहीं है। ये बात हो गई। अभी यहाँ कहते हैं समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही, वो केवल क्षण बताना था, वही क्षण है, वही समय है, उसके कारण हुआ ऐसा नहीं कहा, उसी समय में हुआ है। समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही, अर्थात जब आवरण का क्षय हुआ उस क्षण ही है जो भगवान सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप देने में, ये इंद्रियों का वर्णन चल रहा है। पहले संसार अवस्था में सांसारिक ज्ञान यानी क्षौपशमिक ज्ञान, तो क्षौपशमिक ज्ञान जो वहाँ परिणमन चल रहा है, वहाँ इंद्रियां निमित्त है। तो कहते कि बल को कार्य रूप देने में, अंतर ज्ञान का बल तो अपना है। देखो ये हमारा जो ज्ञान हुआ है अल्प ज्ञान है, पर वो बल ज्ञान रूप परिणमने का हमारा कार्य है। कर्म उसको नहीं कर रहे, इंद्रियां भी उसको नहीं उत्पन्न कर रहे, वो ज्ञान के काल में वहां इंद्रियों की उपस्थिति है, क्योंकि ये कमजोर है ना, वहां उसका निमित्तपना बनता है। उसमें निमित्तभूत हेतुभूत कुछ लोग ऐसा अर्थ लेते हैं भाई कि देखो इंद्रियां ज्ञान में बल देने में निमित्त है। भाई कुछ लोग इसका अर्थ यह करते हैं, वो ई रस्व करना जरा वहां, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो बल देने के लिए नहीं है, बल नहीं दे रहा है। देखो फिर से ये वाक्य पढ़ो, क्या आया है? सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप दे, वो बल भी अपना है और वो कार्य भी अपना है, उसमें ये निमित्त रूप है, वो इंद्रिया है। देखो ज्ञान बल में वह निमित्त है, देखो इंद्रिया अपने ज्ञान में निमित्त है, अपने ज्ञान बल में वह निमित्त है, हेतु है। समझ में आया? सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप देने में, यानी उपादान से अपना कार्य होता है, उसमें इंद्रियां निमित्त भूत है। अभी ये तो संडे को ये विषय चलेगा अपना, निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है, उसके बहुत विस्तार से बात चलेगी, और ये अत्यंत महत्व का विषय है पूरा जिनागम का। जब तक उसके बारे में भ्रमणा है तब तक आगे कुछ नहीं, धर्म की शुरुआत तो बहुत दूर की बात है। ये सारे सिद्धांतों को बिल्कुल इतना ज्ञान में उसकी परीक्षा करके इस तरह से धारण करना है कि यही यानी सुपर मोस्ट बात है, अन्यथा हो ही नहीं सकती। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं अरे निमित्त तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, इससे तो होगा उसको, यानी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन या कहीं ना कहीं अंदर ये बात अभिप्राय में पड़ी रहती है। तो अभिप्राय की बात तो सही ज्ञान होने पर ही निकलेगी। यहाँ क्या कहते हैं, देखो निमित्त बताया, निमित्त को उसी को कहते हैं जो परद्रव्य के कार्य में कुछ नहीं करता है, बस उसकी सहज उपस्थिति होती है, वो भी सहज। हम जबरदस्ती से निमित्त को ला नहीं सकते, कोई अनिष्ट लगता है उसको हटा नहीं सकते, कुछ नहीं। वो तो जिस कार्य निश्चित है तो उसका निमित्त भी निश्चित है, चाहे जिस निमित्त में वो कार्य नहीं होगा, जिस समय। अभी वो बात सब आएगी कि प्रत्येक समय की पर्याय सुनिश्चित है, तो उस पर्याय में जो कारण का सभी पूरा समवाय कहते हैं, अनेक कारण है, उपादान भी है, निमित्त भी है, तो वो सभी वो भी निश्चित है, उस समय वो होगे ही होगे। जैसे हम कहते किसी को एक्सीडेंट हुआ, अरे बाहर नहीं जाता तो घर में मरता, अभी उसका मरण आया था, ऐसा कहने की पद्धति आपने सुनी होगी, ऐसा होता है। उसका मरण का समय भी निश्चित है, जिस रोड पे या जहां जिस क्षेत्र में मरना है वो भी निश्चित है, जिस कार के एक्सीडेंट में जाना है वो भी निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। उसको कोई भी उसको हटाने में समर्थ नहीं, भगवान उसको जानते हैं, पलटा नहीं सकते। आप कहेंगे जानते थे तो पहले बता देते ना, तो वो कुछ उसमें सावधानी से रहता, घर में रहता, बाहर जाता ही नहीं, तो ऐसे होता ही नहीं। क्योंकि हमारे सारे विचार ऐसे, अरे ऐसा क्यों हुआ, हम ऐसा करते तो वो नहीं होता, है ना, इसमें तो रात दिन हमारे जाते हैं, विकल्पों में ही चले जाते, पर विकल्पों से वो कार्य में पर्याय में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसा सुनते तो कहते हैं हम पराधीन हो गए, हम अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, ऐसा लगता है ना। वो सारा विषय वहां चलेगा भी, अभी यहां पढ़ते देखो। तो उपादान से अपना कार्य होता है, उसमें इंद्रियां निमित्त भूत है, हेतुभूत कर दे क्या निमित्त भूत, हेतुभूत ऐसे अपने अपने निश्चित। अभी उसमें भी इंद्रियों में कितनी लिमिटेशंस है, अपने अपने विषयों को ग्रहण करते, ग्रहण करने नहीं जानना। वो हमने देखा था आंख तो अपना विषय क्या है, उसका वर्ण है, आकार है, उसी को ग्रहण करता है, बाकी उसको ध्वनि आंख से नहीं पता चलती। तो अपने अपने विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों से अतीत हुए, ये केवल ज्ञान कैसे, अब ऐसे जो इंद्रिया निमित्तभूत इंद्रिया उससे पार हो गए, यानी अभी इंद्रिय जानने में इंद्रियों का कोई भी वहां पर निमित्त नहीं है, इंद्रिया पड़ी है वहां पर, और आत्म प्रदेशों के डायरेक्ट उसका पूरा जानना चल रहा है, खाली सामने वाली चीज का नहीं, अनादि अनंत सभी द्रव्यों के सभी पर्यायों का। अब आगे कहते हैं, जो स्पर्श रस खट्टा मीठा आदि रस, वर्ण काला आदि रंग पर्याय, और शब्द के ज्ञान रूप, यानी पांच इंद्रियों के ज्ञान रूप, इंद्रियों का ज्ञान है ना, इंद्रियों के विषयों का ज्ञान, सर्व इंद्रिय गुणों के द्वारा, यानी इंद्रियों के जो जो अपने कार्य है उसके द्वारा, सर्व ओर से समरस रूपे समृद्ध है, यानी वो सभी सर्वात्म प्रदेशों से वो सबको जान लेते हैं। इंद्रिया तो अपने अपने विषय को जानती है, और आपको हमें पांच इंद्रिया है, तो दक्षा बहन आप पांचों इंद्रियों के द्वारा एट ए टाइम जान रही कि नहीं, देखो आप देख भी रही है और सुन भी रही है ना, तो एट ए टाइम दो इंद्रियों का काम कर रही हो कि नहीं कर रही हो, वो इतना फास्ट पलटता है, परंतु एट ए टाइम एक इंद्रिया ही काम करती है। और यहाँ तो पांचों इंद्रियों के द्वारा जो यहाँ ग्रहण हो रहा है ना, वो तो आत्म प्रदेशों के द्वारा सभी चीजों को, वहां तो ये पांच स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये तो पुद्गल की पर्याय, अब वहां तो सभी अरूपी द्रव्यों के भी पर्यायों को सभी सर्वात्म प्रदेशों से पूर्ण रूप से अनादि अनंत पर्यायों को जान लेते, ये यहाँ कहना। हमें इंद्रियों से परिचय इसलिए इसकी बात उठाई, केवल वो स्पर्श रस गंध वर्ण ही जानते हैं कि अनंत गुणों के अनंत पर्यायों को जानते हैं, ये हमें इनसे परिचय है इसलिए इनकी बात उठाई। यहाँ पर क्या कहते हैं देखो, सभी ओर से समरस रूप है, एक एक इंद्रिय एक एक विषय का ज्ञान करती थी, और यह ज्ञान ने केवल ज्ञान तो सर्व इंद्रियों का एक साथ ज्ञान करता है, खाली इंद्रियों तो बहुत थोड़े विषयों को जानती है, इंद्रियों तो कितने स्कंधों को तो जानती भी नहीं है, हम मालूम है हमको कर्म को कहाँ इंद्रिया देखती है, ना स्पर्श से जाना जाता है, ना आंखों से, नहीं कान से, नहीं कहीं, ये कर्म है अनंत, इतने अन्य स्कंध है, उसको कहाँ इंद्रिया जानती है, उसकी भी लिमिट है ना, वो मर्यादा में ही जानती है, जैसे हम आवाज को ग्रहण करते हैं उसकी भी लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट उस रेंज में ग्रहण करते, इंद्रियों की लिमिट है, और केवल ज्ञानी को कितनी लिमिट होगी, बिल्कुल कुछ लिमिट नहीं, अमर्यादित है, यानी प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों को एट ए टाइम जान रहे। यहाँ तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द तो पांच ही बातें बताई, क्या पांच ही बातों को जानते हैं, अरे अनंतों को जानते हैं। यह इंद्रियों से अतीत है, बस इतना बताना था। यह चक्षु है, उसके द्वारा ज्ञान होता है, ज्ञान तो अपना है, यह चक्षु तो निमित्त है, लेकिन ज्ञान जो होता है वह भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उससे अपने में ज्ञान होता है, परंतु यह इंद्रिय तो जड़ मिट्टी धूल है। सुशीला बेन ऐसा क्यों कहा, पुद्गल से बनी है क्योंकि शरीर का अंग है वो, यह तो निमित्त है, यह कान भी मिट्टी धूल निमित्त है, अपने में ज्ञान की पर्याय होती है, वह अपने से होती है। देखो अभी भी हमारे जो जानने का कार्य चल रहा है, देखने का चल रहा है, तो ये तो ये चश्मा तो देखता होगा कि नहीं, जैसे चश्मा जड़ है पुद्गल का है, तो ये जो आंख दिख रही है आपको वो भी पुद्गल की बनी है, और जानने का कार्य तो ज्ञान गुण का चल रहा है अंदर में।
ये जो कान वगैरह आप बता रहे हैं, बताया धूल है ना,
यानी ये जड़ अचेतन है, बस इतना बताया। नहीं याद रहने वाला, इसीलिए जल्द में जल्द अपना यहाँ समय थोड़ा है, मूल बात को पकड़ना है। नहीं नहीं याद, देखो 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 देखो, उसकी चिंता मत छोड़ो। अभी वहाँ कौन मिलेगा, कौन मिलेगा निमित्त, उसकी चिंता अभी इतनी अंदर से दृढ़ता करो। नहीं मुझे, मैं तो ये तो ज्ञायक ही हूँ और ये बाकी सब मेरे से जुदा है, इतना तो नक्की कर सकते ना। अभी अभी इसमें आपको अभी निर्णय तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, क्योंकि पहले के सुने हुए कुछ न कुछ भ्रमण है, अभिप्रायों में सब कुछ चल रहा है। अभी यहाँ आपको और अधिक दृढ़ता से उस पर विचार करके निर्णय तक पहुंचना है, मूल बात ये है। और मैं तो अभी ये जो रोज सुन ही रही है, यही तो नक्की करना है। वो खोटा था, हाँ दूसरे हो सकता है, इसीलिए तो अनंत भोग गए हैं, अनंत भोग गए हैं कि नहीं। परंतु अभी चिंता मत करना, अभी चिंता मत करना, क्योंकि अभी आपने सही सुना है, अभी सही सुना है ना आपने, तो सही सुनने के इतने संस्कार दृढ़ हो जाएंगे तो आगे के भोग में मिल जाएगा आपको। निमित्त भी सहज ऐसे मिल जाते हैं कि ये बातें चलती रहती है। इस भोग में आपको ये क्यों मिला, इतना सब ढूंढ ढांढ के भी, यानी अन्य अन्यत्र भटक कर भी ये सही मार्ग पर आ गए ना। ये अपनी योग्यता से, प्रत्येक जो ज्ञान की पर्याय हो, श्रद्धा, सब कुछ अपनी योग्यता से होने वाली, उसकी चिंता छोड़ दो। आगे क्या होगा, अभी ये चला जाएगा तो मैं क्या करूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करना। जो हम पढ़ रहे उसको अंदर दिल तक ग्रहण करो, चिंता की बात ही नहीं उसमें, कोई मार्ग ही ऐसा है। क्योंकि जिसको आप अगर परावर्तन का स्वरूप देखेंगे, अनंत 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 क्या होता है, इतना काल गया है और आज चल के हमको ये सही, आप कहेंगे क्या पहले भी मिला होगा, मिला होगा पर वो चला गया, क्योंकि उसको सही रूप से स्वीकार नहीं किया है, ऐसे सुनने के लिए सुना और सुना नहीं सुना ऐसा हो गया। अरे तीर्थंकरों के पास भी सुन के आए ना यह जीव, परंतु उसमें भी ऊपरी ऊपरी ऐसा है, उसमें उसका सही ख्याल नहीं लिया। जैसे हम कहते अभी दयादान, ये तो हम वो मान्यता की बात करते हैं तो उसने इसमें ले लेते हैं, आचरण में लेते हैं। अगर सही आप बुद्धि पूर्वक यानी बुद्धि लगा के बराबर उसका ग्रहण करो, कुछ भी कठिन बात नहीं है। और ये विचार ही मत रखो मेरा क्या होगा, मैं अभवी हूँ क्या, क्या ये सब चला जाएगा और ये हो, ये कुछ नहीं चिंता करना है। ये बता नहीं, सूक्ष्म है परंतु ये मेरी बात है, बस इतना है। अंदर सच्ची रुचि पूर्वक उसको ग्रहण करेंगे ना तो सब कुछ मार्ग सरल हो जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। कुछ उसमें चिंता करने, कैसे होगा, कौन समझेगा, ये कैसे याद रहेगा, इतने काल तक कुछ नहीं किया, चिंता मत करो उसकी। अरे 8 साल का बच्चा भी कर सकता है उसमें, ऐसा है। और हर एक के लिए कुछ ना कुछ मिथ्यात्व के संस्कार अनादि से पड़े ही है। सही मार्ग अभी मिल गया है तो हमको उसको बराबर, जब सुन रहे उतना तो आप इतना तो समय निकाल के आए हो, घर में जाने के बाद आपको वो समय नहीं मिलता है, परंतु जो समय आप यहाँ बैठे हो बिल्कुल उसको उपयोग पूर्वक, जिसको ध्यान पूर्वक सुनना है, और उसका नहीं समझते तो पूछना उसके किस अपेक्षा से क्या बात आती है। और ये प्रवचन सार अत्यंत, यानी ये तो बेस है, ये बेस को जब समझेंगे, क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा पूरा सही निर्णय हो तो फिर आगे चलकर आत्मानुभव की बात आती है। ये बहुत महत्व का शास्त्र है, गुरुदेव ने भी कहा है समय सार पढ़ने के पहले इसको पढ़ो, क्योंकि यहाँ द्रव्य गुण पढ़े कितनी बेसिक बात चल रही है ना अभी, उत्पाद वेद्रोता वगैरह सब बातें चल रही है, और आगे और भी बहुत अद्भुत बातें आने वाली इसमें।
की क्लास में जो प्रवचन चलने वाले हैं वो भी उत्कृष्ट है,
बहुत उत्कृष्ट है। अब तो बेंश्री बेन के वचनामृत के ऊपर गुरुदेव के प्रवचन है, यानी जिसको कहेंगे अध्यात्म का सार सार मिलने वाला है पूरा। अब एक एक विषय भी और ग्रंथ भी ऐसे अद्भुत है, अभी हमको अभी ढूंढना पड़ता है कि अभी कौन सा पढ़े क्या। ये भी सारा प्रवचन सार पहले हुए थे, इस पर 950 लेक्चर्स हुए थे, इन्होंने किए थे, समय सार भी दो बार हुआ है यहाँ पर। कितने ग्रंथ रिपीटेड करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम दोबारा दोबारा उसमें पढ़ेंगे। हमारा अपना निजी तो बहुत बार हुआ है। चिंता मत करो, रोज का जितना सुन रही हूँ ना वो पूरे ग्रंथ का नाम लेके कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। आज का विषय आपको समझ में आता है कि नहीं, बस इतना देगा। बस मैं ज्ञायक हूँ बस, और उसका एक चिंतन सतत वो अंदर चालू रखना।
आप क्या कह रहे हैं, जयपुर के पास रहते हुए भी कुछ नहीं मिला, यहाँ बम्बई में आने के बाद मिला? क्या उसका निमित्त भी नक्की था? निमित्त से कुछ नहीं होता है।
नहीं, मैं तो कहती हूँ आपकी इस उम्र में आपको रुचि लगी है, बहुत अच्छी बात है, हमको बहुत लेट मिला। मुझे तो अच्छा लगता है कि छोटे बच्चे इस एज में जी। हाँ, और जितने लौकिक भी पढ़ाई हुई है आपकी, तो आप और उसको अच्छी तरह से ग्रास कर सकते, इंटेलिजेंस तो है वहाँ पर। और हम ऐसे किसी ने बताया और स्वीकार किया, ऐसा तो नहीं होता, हम उस पर विचार करते हैं, ये बहुत महत्व की बात है। नहीं तो बाकी हमारे ऐसे लोग हाँ हाँ करेंगे, क्योंकि वो जैनिज्म, हम जैन हैं और भगवान ने बताया तो बिल्कुल सही है कहेंगे, और आप जब तक आपको नहीं पटता वो तो अंदर से तो नहीं स्वीकार करेंगे। आगे देखो पेज नंबर 18 पर है। हाँ, एक दो तीन चार, कहाँ से? नहीं, पूरा ज्ञान होता है, ये हो गया ना, भगवान को सब इंद्रिय का ज्ञान, एक समय में सर्व पूरा ज्ञान होता है। वहाँ ये बात आई थी, इंद्रिय से भिन्न भिन्न ज्ञान होता है, एक एक इंद्रिय से ज्ञान भिन्न भिन्न होता है, और केवल ज्ञान सबको एट ए टाइम एक समय में जान लेता है। अब नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे, लास्ट पैराग्राफ। प्रभु का मार्ग बहुत सूक्ष्म है भाई, उसे अनंत काल में समझा नहीं, क्या कहा, सुना नहीं कहा, समझा नहीं कहा, है ना। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, अभी मुनिव्रत धारा है तो वो तो जिनेन्द्र को ही सही समझा है, और ये मुनि हुए बिना अरिंत नहीं हो गए, ये तो बात सही समझ में है, यानी वहां तो गृहित मिथ्या तो था नहीं, क्योंकि सच्चा मुनि पद लिया है बाहर से, तो आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, यानी कहीं ना कहीं चूक हो रही है, अभिप्राय में अभी भी कहीं ना कहीं मिथ्या मान्यता पड़ी है, है? तो कितने, एक दो बार नहीं, अनंतो बार। और ग्रेवेक में वही जाता है तो उत्कृष्ट 300 हनन होने चाहिए, यानी कर्म भूमि में वो भी चौथे काल में से ही जाएंगे ना, ग्रेवेक में जाने वाला चौथे से जाएगा या विदेह क्षेत्र से जाएगा, परंतु ऐसा भी। और हर मनुष्य भूमि में मुनि दीक्षा थोड़ी लेने वाला है, फिर भी ऐसे दीक्षा लेकर जो ग्रेवेक तक जाने के परिणाम हुए है, ऐसे अनंतो बार हुए, एक दो बार नहीं हुए, अरे असंख्यात को काउंट करते तो हमको यहाँ चक्कर आने लगते हैं, ये अनंत क्या चीज होती है। तो इस जीव ने किया कि नहीं, और उसमें खाली बाहर या ऐसा नहीं, शास्त्र भी पढ़े उसने, उसका मर्म बराबर नहीं पकड़ा, परंतु शास्त्र तो पढ़े उसने, वो आता है ना 11 अंग 9 पूर्व तक का पढ़ा उसने। हाँ, तो कहते कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रह पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। तो आप कहेंगे अभी इस भव में नहीं मिलेगा आगे भव, अरे एक बार एक दो बार नहीं, अनंत बार ऐसा करके कहाँ चुक गया, सही उसका भाव पकड़ा नहीं, सही रहस्य धारण नहीं किया, वो राग भाव में धर्म माना, शरीर की क्रिया करने से तप करने से धर्म होता ऐसा माना। ये जो अध्यात्म की बात है वो बहुत कम, अभी हमने पूरा अभी हरिवंश पुराण भी पढ़ा तो उसमें भी इन्होंने मुनि व्रत धारण किया, इतना तप किया, परंतु वो जो मूल बात है ना, कैसे होता है, क्या ये आत्मा में स्थिरता वगैरह की बात, वो तो रह जाती है क्योंकि वो प्रथमानुयोग में वो बातें होती है, ऐसा नहीं है, वहां तो कथाओं की मुख्यता होती है। ये अध्यात्म ग्रंथों में हमें सार चीज मिलती है। यहाँ पर देखो, मुनिव्रत धारण किया, दिगंबर हुआ, अनंत बार पंच महाव्रत लिया, हजारों रानी का त्याग किया, कपड़े का त्याग किया, लेकिन अंदर में ये पंच महाव्रत की क्रिया जो राग है उसको धर्म माने, कहां चूक हो गई? हाँ, ये उसको उसने धर्म मान कर किया। समझ में आया? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, छड़ाला में आता है छड़ाला, हाँ हाँ, आत्मज्ञान बिना सुख लेशन पायो। पंच महाव्रत का परिणाम 28 मूल गुण का भाव, वह आश्रव और दुख है। क्यों? वह राग है, राग है वो आश्रव है, आश्रव है वो दुख रूप है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, 9 ग्रेवेक है, यह 14 ब्रह्मांड पुरुष के आकार है, उसकी ग्रीवा, ग्रीवा यानी वो नेक, नेक नेक, आप क्या कहते गुजराती में, डोक, स्थान में 9 ग्रेवेक है, ग्रेवेक यानी ग्रीवा के स्थान में स्वर्ग के 9 पासड़े है, पासड़े यानी पटल, लेयर्स, एक के ऊपर एक एक लेयर्स में बहुत सारे विमान होते हैं, तो एक एक लेयर पर वो सारे, पहला ग्रेवेक नीचे का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे एक के ऊपर एक, ऐसे 9 ग्रेवेक है। ग्रेवे ये कहने वो स्वर्गों के विमान होते हैं, वो भी ग्रह जैसे पृथ्वी के खंड होते, उसको ग्रह नहीं कहते, ये ग्रह तारे, ये तो ज्योतिष विमानों, ज्योतिषी देवों के वो रहने के ठिकाने हैं, उसके ऊपर जो वैमानिकों के उसको विमान कहते हैं, और ये ज्योतिषियों के जो विमान है उसको ग्रह तारे नक्षत्र वगैरह कहते हैं। वो तो असंख्यात है, परंतु उसकी भी संख्या है, कैसे गिनती करना है, कितने क्या है, वो पूरा अपने त्रिलोक सार में वगैरह सब उसकी बात आती है, हमने जैन भूगोल में भी लिया था उसको। यहाँ क्या कहते हैं देखो, पंच महाव्रत धारण करके, 28 मूल गुण का पालन करके, नग्नपना धारण करके, अनंत बार गया, पयने परंतु आत्म ज्ञान बिना, यानी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, अंदर राग से मेरी चीज भिन्न है उसका ज्ञान किया नहीं, और ये जो तप वगैरह किया जिसको कहेंगे वो बाह्य तप है, उसको बाल तप कहते हैं, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है तो बाल का अर्थ क्या होता है? अज्ञानी, अज्ञानी का तप, अज्ञानी की सापेक्षा से इतना शास्त्र का अभ्यास किया है ना, आत्मा का ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी। कल कौन से चैनल? अच्छा अच्छा, वो चैनल वालों ने उनको सुबह आता है और ठीक, क्योंकि क्या करे, अभी उसी को तो तप समझते है ना, ऐसा ही है उसी की महत्व। वो इधर करोड़ों देगा तो चैनल वालों को क्यों नहीं देगा? दुनिया में ऐसा ही चलता है, तो ये तो मूल मार्ग रह जाता है, क्योंकि हो हा इसकी चलती है ना बाहर, और उसी का महत्ता आती है सुनने वालों को, देखने वालों को, वहां देखने के लिए कितनी भीड़ चली जाएगी, जाती कि नहीं जाती?
ऐसा है, वो चैनल वाले को चैनल चलाना है, इसलिए जो चालू चीजें उसको
नेचुरली, क्योंकि उसको पैसा भी मिलना है और हाँ। जाहिरातें मिलने, सब कुछ है, वो तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना सारे, सबके कोई ना कोई अपना अपना निजी मतलब उसके पीछे है स्वार्थ।
देखो एक मैगजीन चलाने वाले भाई थे वो हमारे पास आए और बोले आप कुछ भी लिख के देना। हमने कहा हम क्या लिखेंगे, उज्ज्वला को कह रहे थे आप ऐसा करो स्वामी जी को जो कुछ उनके प्रवचन है वो आप लिखो।
वो क्यों नहीं लेते,
वो उपलब्ध है, क्यों नहीं लिखते आप, सच बोलो। हाँ सच बोलो। तो बोले हमको मैगजीन चलाना है, बंद नहीं करवाना है।
क्योंकि उनके मैगजीन में उन्होंने एक लेख छापा था कि रजनीश के दृष्टि में भगवान महावीर। मैंने बोला महावीर की दृष्टि में आप लोग कौन है पहले जानते नहीं है, आपको रजनीश चलता है, कांजी स्वामी नहीं चलते, ऐसा मैंने पूछा उसको। यहाँ आया था, यहाँ बैठा था, संपादक आया था उसका। उन्होंने क्या करे, हमको मैगजीन चलानी है, यानी ऊपर से जो पैसे देने वाले हैं वो उनको गवर्न करते हैं। चलता है, देखो जिसकी जिसको होनहार है कहो, जिसको मिलना है उसी को मिलेगा, चाहे जिसको नहीं, भले आप कहो नहीं कहो। क्योंकि ये काल इतना निकृष्ट है और ऐसे निकृष्ट काल में उत्कृष्ट उपदेश अभी भी अवेलेबल है, ये कितनी बात अच्छी है, ये आप सोचो, इस तरह से सोचो, उसको कितने सुनते उसको मत सोचो, यानी वो कितने गिने चुने भाग्यवान है उसकी बात सोचो, और आप उसमें से एक हो। यानी ये किसी को मस्का लगाने के लिए नहीं। सोनगढ़ में जाते थे तो ये कहते थे, हमेशा ऐसा लगता था कांजी समय ऐसी नहीं, भाग्यवंतना पुण्यवंतना काने बात पड़े छे। केवली होके केवल केवल ज्ञान तेरे गुणस्थान में रहते हैं कुछ काल के लिए, सीधे चले जाते हैं। हाँ देखो देखो आवाज आ रही है, जब बोलना है तो मैं फिर ऑन करूंगी। देखो नीचे आए थे हम यहाँ पर 18 में। हाँ देखो अंदर पे आत्मज्ञान भिन्न, अंदर राग से मेरी चीज भिन्न है, यानी मेरे स्वभाव में राग नहीं है, मैं राग से रहित हूँ। क्योंकि स्वभाव कैसा है, अनादि अनंत, अनंत गुणों का पिंड ऐसा मैं हूँ, तो उसमें राग है पर्याय में है, स्वभाव में राग नहीं है। क्योंकि राग ये कौन सा तत्व है, आश्रव तत्व है, और मैं कौन हूँ, जीव तत्व, जुदे है ना, तो मैं यानी जीव तत्व मुझ में आश्रव नहीं है। अलग अलग उसके अलग अलग हमने बांट दिया ना तत्वों को, तो जब मैं कहते हैं तो मैं यानी जीव तत्व, तो मुझ में राग है क्या, आप कहेंगे इतने तो क्रोध करते और मुझ में राग नहीं कहते, ये मैं किसको कहा, जीव तत्व को। अभी पर्याय में राग है, स्वभाव में राग नहीं है, और वो स्वभाव को मैं कह रही हूं। अपना मैंपना उसमें जब लगेगा, भाषित होगा, कहने से नहीं होगा, भाषित होना चाहिए। अभी मैं किस में भाषित हो रहा है, मैं कहते कौन सा, वो पूरी फोटो आंखों के सामने आती है, ये मनुष्य यह मैं हूं, मैं माँ हूं या बच्ची हूं या जो कुछ वाइफ हूं, ये आंखों के सामने आता है। अब मैं कहते जब ज्ञायक स्वभाव भाव मैं रूप लगने लगेगा तो ये तो सब क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा, उसमें करना कुछ नहीं है, जो है उसको वैसा समझना है, मानना है। अभी तक मानते आए ना, क्योंकि ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता कि तू शरीर रूप है, ये तो इसी को अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। तू शरीर रूप है ये किसी जीव को पढ़ाना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता है, वो तो चली आ रही है मान्यता अनादि से, पर तू उससे जुदा है, कोई जानने वाली चीज जुदी है, यह हमें जिनेंद्र भगवान के उपदेश से समझ में आ जाता है। तो सही उपदेश सुना, अभी हमने उस पर गौर करना है और अपने मान्यता के साथ उसको टैली करना है, मिलान करना है, और उसमें से जो सही उसको पकड़ना है। ख्याल में है ना बात, देखो क्या कह रहे हैं, यह विकल्प की क्रिया से, कौन सा विकल्प की क्रिया, ये जो कोई हम दया दान भक्ति वगैरह जो कर रहे हैं ये विकल्प है, उस क्रिया से मेरी चीज अंदर भिन्न है, मेरी चीज को या मैं स्वयं अंदर भिन्न हूँ, ऐसा आत्मज्ञान किया नहीं, ये मैं भिन्न हूँ ये अभी बोलने की बातें नहीं, अभी वो तो भाषा में विकल्प में है, परंतु वैसा उसको अनुभव हो जाएगा। आत्मज्ञान बिना सुख लेश, जब तक आत्मा का ज्ञान यानी आत्मा का अनुभव नहीं होता तो सुख की शुरुआत ही नहीं हुआ, लेश भी सुख नहीं हुआ है। अभी हम सुख किसमें मानते हैं, पैसे में, कपड़ों में, गहनों में, बाग बगीचा बंगले में, तो कहते वो तो है ही नहीं सुख। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है तब सच्चे सुख का अनुभव ही नहीं हुआ, तो उसको उसने माना हुआ सुख जो उसी में रचा पचा है। देखो यहाँ क्या कहते, 19 पेज पर आना, वह पंच महाव्रत का परिणाम 28 मूल गुण का भाव राग है, दुख है, आश्रव है। तो आप कहेंगे फिर मुनिराज क्यों करते हैं, करते नहीं होते हैं, क्योंकि अज्ञानी को लगता है ये क्यों करते हैं, करने की बात नहीं होती। जब राग से अपना स्वरूप भिन्न पहचान लिया, बारंबार उसका अनुभव कर रहे हैं, तो मैं तो ज्ञायक हूँ, तो जो आने वाले राग को वो भी ज्ञाता ही है, और देखने वाले को लगता है ये क्यों कर रहे हैं, है ना, समझ में है डिफरेंस क्या। तो उनमें ये विकल्प उठ रहे हैं, कौन से, पंच महाव्रत के। अभी आपको क्या विकल्प आता है, जाऊं मैं स्वाध्याय सुनूं, ये विकल्प उठा, ये विकल्प क्या है, राग है, ये राग है यानी ये पुण्य परिणाम है और ये बंध का कारण है, तो क्या शास्त्र छोड़ दे, शास्त्र छोड़े तो पाप में रचे पचे रहेंगे, और जहां ये स्वरूप समझने का चांस है इसके द्वारा वो भी चला जाएगा, छोड़ने की बात नहीं, पर ये राग है बंध है, बस इतना नक्की करना है, हमारी कौन सी क्रिया से क्या चल रहा है इसका हिसाब रखना है हमको, और कुछ नहीं करना, वो चेंज करो या कर ही नहीं सकते, आने वाला राग तो जो आना है वही आता है सब कुछ। हमें तो मैं ज्ञायक हूँ और ये मेरे में राग जो उत्पन्न हुआ है मेरे से जुदा है, इसके कारण मैं बड़ा हूँ, पहले नहीं करता था स्वाध्याय, अभी स्वाध्याय रोज करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है, राग के कारण कोई बड़ा नहीं होता है, उस राग से मैं जुदा हूँ ये बात नक्की करनी। देखो पंच महाव्रत का परिणाम 28 मूल गुण का भाव राग है, दुख है, आश्रव है, बहुत कठिन काम है, कठिन इसलिए कि इसको कोई मानने को तैयार होगा। अब जिसमें करोड़ों की बोली चल रही वो दुख रूप भाव है। मार्ग ऐसा है भाई, हाँ हाँ, आत्मा पर का तो कुछ कर सकता नहीं, लेकिन अंदर राग होता है उसका कर्ता होता है वह अज्ञान और मिथ्यात्व। क्या कहा, ये राग का जो कर्ता होता है, क्योंकि देखो मैं ऐसा राग करता हूँ, मैं इसको बदलता हूँ, ये करने धरने वाला बन जाता है, मैंने ऐसे व्रत पाले, मैंने ऐसा किया, मैंने इसने सबको पढ़ाया, ये क्या हुआ सब, राग का कर्तापना है। राग आता है जीव उसको जानता है, परंतु अज्ञान अवस्था में उसने वो उसको करने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला माना, अकेले अपने राग का नहीं पर के राग का भी कंट्रोलर हो जाता है, नहीं समझे, ऐसा होता है कि नहीं, मैंने सबको समझाया ऐसा होना चाहिए, तो यानी वो पर, हाँ पर क्या करे उसको भी ये कंट्रोल करता है, यानी मानता है कि मैंने किया, देखो मैंने उसको ऐसा समझा ना इसलिए उसने किया, ऐसा कहता भी है, होने वाला परिणाम होता है उसको समझाने का भाव है, पर उसके कारण पर का परिणाम हुआ ये बात कहाँ से आ गई, ये कह रही यहाँ पर। आत्मा पर का तो कुछ कर सकता नहीं, लेकिन अंदर राग होता है उसका कर्ता होता है वह अज्ञान और मिथ्यात्व। क्यों, क्योंकि भगवान आत्मा द्रव्य है और उसमें जो अनंत अनंत गुण है वे शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि गुण तो हमेशा उसके पूर्ण सामर्थ्य सहित विराजमान है, पर्याय में हो सकता है विभाव परिणमन है या स्वभाव परिणमन है, पर गुण तो प्योर ही प्योर है, अंदर शुद्ध ही पड़े है, अंदर भगवान आत्मा में अनंत 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 कहीं अंत नहीं, इतने अनंता गुण है, ये सब अंदर पवित्र है, तभी आपका ज्ञान गुण श्रद्धा गुण पवित्र है कि नहीं है। पर्याय की बात नहीं पूछ रहे, गुण की बात पूछ रहे, गुण तो परिपूर्ण पड़े हैं अंदर, हा? ऐसे पवित्र गुण का पिंड प्रभु, यानी मैं कौन हूँ तो अनंत गुणों का पिंड हूँ, उसका ज्ञान किया नहीं, उसको नहीं जाना, वह स्व सन्मुख हुआ नहीं, जाना नहीं, नहीं अपने आप को नहीं जाना, तो अपने तरफ उसने कभी देखा ही नहीं, स्व सन्मुख, तो ये ज्ञान कहाँ चला है, पर को जानने में रुका है। हाँ, राग की क्रिया की, किया कि नहीं, वो मान करके मैं इसका करता हूँ करके उसने राग की क्रिया की, वह तो पर सन्मुख की क्रिया थी, पर दिशा तरफ का भाव था। ऐसी बात कठिन पड़े लेकिन क्या हो भाई, मार्ग तो यह है, अनंत तीर्थंकरों, अनंत केवली, अनंत दिगंबर मुनियों, संतो इस तरह कहते हैं। वही बात यहाँ कहते हैं कि पांच इंद्रिय के विषयों का एक एक इंद्रिय एक एक का ज्ञान करती थी, अब सर्व ओर से समरस रूप से समृद्ध है, ऐसा भगवान का ज्ञान एक साथ जानता है। पहले एक एक इंद्रिय का ज्ञान था, अब सर्व इंद्रियों का ज्ञान एक पर्याय में एक साथ होता है, ऐसी बातें है। सर्व ओर से समरस रूपे, अर्थात समता रस से वितराग रूप से समृद्ध है, समृद्ध है ने भरे पड़े हैं, अर्थात जो भगवान स्पर्श रस गंध वर्ण तथा शब्द को सर्व आत्म प्रदेशों से समान रूपे जानते हैं। पहले क्या था, एक एक इंद्रिय के द्वारा एक एक का ग्रहण होता था, अब सभी आत्म प्रदेशों से सभी का ज्ञान होता है। सर्व आत्म प्रदेशों से ऐसा कहा, एक एक इंद्रिय तो उस आत्म प्रदेश से जानती थी, क्योंकि जो वर्ण का ग्रहण है वह आत्मा के प्रदेश तो सर्वत्र है, पर यहाँ के जो प्रदेश है, जो अंदर की जो, ये तो बाहर की इंद्रिया है उसकी बात नहीं, जो अंदर रेटाइना वगैरह जो है ना, वहां पर जो चक्षु इंद्रिय जो बनी है, द्रव्य इंद्रिय बाहर का, उसको उपकरण कहते हैं, और अंदर की जो है वो रचना जहाँ हुई है, तो कहते वहां के आत्म प्रदेशों से वो कार्य होता है। अब जीव में यहाँ के जो आत्म प्रदेश है उसमें भी वो रस का जानने का कार्य होता है, ये के स्पेसिफिकली, तो कहते कि एक एक इंद्रिय उस आत्म प्रदेश से जानती न थी ना, क्या जानती थी चाहिए, एक एक इंद्रिय तो उस आत्म प्रदेश से जानती थी, वो न निकाल दो, यह तो सर्व आत्म प्रदेशों से जानता है, यह है ना केवल ज्ञान, समान रूप से जानते हैं, चक्षु इंद्रिय ज्ञान में तो यहाँ जो प्रदेश है वही रूप को जानते थे, कान के जो प्रदेश यहाँ है वही शब्द को जानते थे, उन्होंने हाथ से बताए हुए यहाँ करके ऐसे यहाँ करके। हाँ, यह ज्ञान है ना केवल ज्ञान, तो सारा प्रदेश से असंख्य प्रदेश से एक साथ जानता है। असंख्य प्रदेशी यानी क्या, आत्मा असंख्य प्रदेशी है, जैसे चैन है ना, चैन में वो साकली, जैसे कड़ी है ना, कड़ी 500,000 कड़ी होती है ना, ऐसे आत्मा में असंख्य प्रदेश है, ऐसा नहीं समझना वो कड़ी एक में ऐसे गुंथी हुई, ऐसा प्रदेश एक में फिक्स हुआ, ऐसा नहीं है, बस उसके प्रदेश है, बस इतना है। यहाँ प्रदेश है, यहाँ प्रदेश है, ऐसे असंख्य प्रदेश है, देह से भिन्न अरूपी भगवान है, देखो देह के शरीर के प्रदेश, शरीर के परमाणु का पिंड है वो तो जुदा, उसी एरिया में एक क्षेत्रावगाह रूप से आत्मा के प्रदेश अपने प्रदेश जुदे, जैसे हमने देखा ना कोई कांच का गोला है और उसके अंदर हमने लाइट डाला तो लाइट थ्रू एंड थ्रू चला गया, तो जिस एरिया में कांच है उस एरिया में अंदर लाइट है कि नहीं, तो क्या हुआ वा? जहां कांच का वो भी सॉलिड है ना, तो लाइट को काम मिला उसके रहने का जगह, तो उसने एक दूसरे को अवगाहना देकर वहां जिस एरिया में कांच है उसी एरिया में लाइट भी है, वहां पर प्रकाश भी वहीं पर है, इस तरह से जहां शरीर की रचना हुए वहीं पर आत्मा के प्रदेश अपने जुदे है, दोनों का अस्तित्व जुदा जुदा है, उसको कौन सा संबंध कहा था याद है, बहुत अच्छा, एक क्षेत्र होगा, बहुत अच्छा। देह से भिन्न अरूपी भगवान है। देह तो जड़ मिट्टी धूल है, यानी पुद्गल की रचना है। वाणी भी मिट्टी धूल है क्योंकि भाषा वर्गणा का परिणाम है। उससे भिन्न अंदर भगवान आत्मा है। पुण्य और पाप का विकार भाव जो विकल्प है उससे भी अंदर भगवान भिन्न है। देखो अभी ये जीव के ही प्रदेशों में चारित्र गुण की विभाव है, कौन सा पुण्य पाप के भाव, परंतु वहां क्या है, हमने उसको आश्रय तत्व पुण्य पाप तत्व अलग नाम दिया है, उसको पर्याय जुदी निकालिए, तो जीव तत्व उससे भिन्न है कि नहीं है भिन्न, ये बात यहां बता रही। ऐसे अनंत अनंत पवित्र गुणों का पिंड प्रभु है, उसका जहां ज्ञान हुआ। देखो ये पर्याय पूरे द्रव्य से कभी अलग नहीं कर सकते, पर हम उसको गौण करके केवल द्रव्य को हम सोच सकते। जैसे आपको पूछा आपके पास कितना सोना है तारा बहन, इनको मालूम है? अरे वाह 50 किलो। तो जब हम सोना कितना है पूछते हैं, सोना कितना है लाओ सब इकट्ठा करो, तो आपने जो बंगड़ी लाए, हार लाया, कमरपट्टा लाया, क्या क्या मुकुट भी होगा आपके पास वो भी लाके रखा, पर सोना कितना है कि देखते क्या, हमारी नजर कहाँ गई, कितना ग्राम है क्या है, तभी सभी हम जो पर्याय उसकी निकल गई क्या, बाहर निकाली पर्याय उधर ही है, हमने उसको गौण कर दिया, हमने मुख्य किसको किया, सोना कितना है। तो ये मुख्य गौण करने की कला है हमारे ज्ञान में, और यहाँ किसको मुख्य करना है, वो पर्यायों को गौण करके, क्योंकि हर एक तत्व अलग अलग है, आश्रव तत्व भिन्न, पंद तत्व भिन्न, ये सब भिन्न भिन्न तत्व है, और मैं कौन हूँ जी। तो यहाँ पर्याय के रहते हुए उसमें से हमको स्वभाव को सोचना है कैसे, वो जुदा करके एक हिमालय पर एक कन्याकुमारी में रख नहीं सकते, वो है उधर ही है। हमको किसको निग्लेक्ट करना है, किसको मुख्य करना है, ये कला हमारे में है, हम लौकिक में बहुत करते हैं इसको, पर जब अध्यात्म की बात आती है तो कठिन लगता है ना। ऐसे अनंत, देखो ये पुण्य पाप का विकार भाव विकल्प है, उससे भी अंदर भगवान भिन्न है। ऐसे अनंत अनंत पवित्र गुणों का पिंड प्रभु है, उसका जहां ज्ञान हुआ और भान हुआ और शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान हुआ, तब एक एक इंद्रिय का शब्द रस आदि का एक एक ज्ञान होता था, अब एक ही समय की ज्ञान की पर्याय में सर्व इंद्रियों का ज्ञान एक साथ होता है, उसे इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं। यह इंद्रियों की जरूरत नहीं है बताने के लिए, केवल इंद्रियों के विषयों की बात है, बाकी तो सभी अनंत गुणों के पर्यायों को एक साथ जान रहे, अकेले चार पांच गुणों की बात नहीं है यहाँ पर। अरे परमात्मा आने कही ने, अब यही रुकेंगे हम। छावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक सनादित हो। नलिन भाई नमस्कार।